नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया, देश में क्रूड ऑयल का पर्याप्त भंडार, पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सामान्य चल रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज डूंगरपुर में जनजाति इलाकों के लिए 1,900 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद के लिए पंजीकरण 20 मार्च से शुरू होगा। और उत्तर भारत की प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी का वार्षिक मेला आज से शुरू, कई राज्यों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में क्रूड ऑयल का पर्याप्त भंडार है, पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सामान्य चल रही है। आज नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और कहीं भी पेट्रोल की कमी की कोई खबर नहीं है। संयुक्त सचिव ने जानकारी दी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के माध्यम से की गई डिलीवरी पिछले महीने के 53% से बढ़कर अब 72% हो गई है। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए निरीक्षण किए जा रहे हैं।
हम बार बार कंज्यूमर्स से अपील कर रहे थे कि ऑनलाइन बुकिंग करें, उसकी वजह से ऑनलाइन बुकिंग में इंक्रीज हुआ है और कल के डाटा के हिसाब से लगभग 90% बुकिंग्स हैव बीन ऑनलाइन। एक और इनिशिएटिव जो हम इस वक्त पुश करना चाह रहे हैं वो है डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। सो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के नंबर्स में भी इम्प्रूवमेंट आया है, जो पहले 53% हुआ करता था, कल वो 72% था।
संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखे हुए है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे घबराकर ईंधन की ज्यादा खरीद ना करें, क्योंकि इनका पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। प्रेस ब्रीफिंग में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि एलपीजी वाहक पोत शिवालिक आज शाम तक पहुंच जाएगा, वहीं भारतीय पोत नंदा देवी कल पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात से रवाना हुआ भारतीय ध्वज वाला पोत जग लाड़की सुरक्षित रूप से भारत के रास्ते में है। वहीं विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ईरान में मौजूद लगभग 550 भारतीय नागरिक जमीनी सीमा के रास्ते आर्मेनिया में प्रवेश कर गए हैं। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि कठिनाइयों के बावजूद भारतीय दूतावास पूरी तरह से कार्यरत है।
ईरान में भारतीय समुदाय के लोग में कुछ नाविक लोग भी हैं और साथ ही साथ मछुआरे समुदाय के लोग भी हैं। इनके कंपनियों के साथ हमारी लगातार बातचीत होती रहती है ताकि हम उनका देखभाल, उनकी भलाई सुनिश्चित कर सकें। सभी भारतीय नागरिकों से हमारा अनुरोध है कि जो एडवाइजरी हमारे राजदूतावास ने निकाला है उस पर अमल करें। भारत सरकार प्रतिबद्ध है, अपने देशवासी वहां रहते हैं ईरान में, उनकी देखभाल के लिए, उनकी भलाई के लिए।
इस बीच प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग की रोकथाम के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। बीकानेर में रसद विभाग ने एक संदिग्ध बाड़े से 38 घरेलू गैस सिलेंडर, गैस रिफिलिंग मोटर और तोलन कांटा बरामद किया। केंद्र सरकार स्टैंडअप इंडिया योजना के नए संस्करण का शुभारंभ करेगी ताकि देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों को अधिक लाभ पहुंच सके। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अप्रैल 2016 में शुरू हुई स्टैंडअप इंडिया योजना पिछले वर्ष मार्च में समाप्त हो गई। उन्होंने बताया कि इस योजना का नीति आयोग और अन्य विभाग ने अध्ययन किया है और लाभार्थियों को ज्यादा लाभ प्रदान करने के लिए इसे फिर से तैयार किया जा रहा है। देश में स्वरोजगार वर्ष 2017-2018 के 52% से बढ़कर 58% हो गया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश की आर्थिक वृद्धि के साथ साथ श्रमिकों की आय में भी वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि दिहाड़ी मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी 2017-2018 के 295 रुपए से बढ़कर अब 418 रुपए हो गई है। श्री मांडविया ने कहा कि नई श्रम संहिता के अनुसार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है और सभी राज्यों को इससे अधिक मजदूरी का भुगतान करना होगा।
अभी लेबर कोड में हमने प्रावधान करा है, आज तक मंथली सैलरी मिलने वाले लोगों को भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता था, लेकिन अभी लेबर कोड लागू होने से जिसको मंथली सैलरी मिलती है उसको कंपल्सरी अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने से उसको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, उसकी जिम्मेवारी भी फिक्स हो जाएगी, मिनिमम वेज और सैलरी भी फिक्स हो जाएगी और सोशल सिक्योरिटी भी फिक्स हो जाएगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में राज्य स्तरीय राजस्थानी जनजातीय गौरव दिवस समारोह में 1900 करोड़ रुपए की लागत से 326 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं का लाभ डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जैसे जनजाति बहुल जिलों को मिलेगा। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की प्रगति में जनजातीय समाज का योगदान बेहद अहम रहा है। सरकार जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए लगातार योजनाएं लागू की जा रही हैं ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला एक पर्यटन योजना के तहत बेणेश्वर धाम को पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 130 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है।
बेणेश्वर धाम का संगम, अबुदरा घाटों का निर्माण, वर्ष अंत तक जल उपलब्ध कराए जाने, बेणेश्वर धाम में निकट रिमोडिंग कर 130 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। लगातार वो भी काम कर रहे हैं। हम विकसित भारत और विकसित राजस्थान 2047 का लक्ष्य जनजातीय समाज के विकास और सहयोग के लिए कैसे आगे काम कर सकते हैं, हमारी सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। जनजातीय समाज के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। जनजातीय समाज के कल्याण के लिए हमारी सरकार समर्पित होकर काम कर रही है।
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने मेधावी बालिकाओं को स्कूटी वितरित की। वहीं महिला स्वयं सहायता समूहों की लखपति दीदियों को टैबलेट और ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण राज्य के विकास की मजबूत नींव है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2026-2027 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद के लिए पंजीकरण 20 मार्च से शुरू होगा। पंजीकृत किसानों से इन फसलों की खरीद 1 अप्रैल से प्रारंभ की जाएगी। चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,875 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों का 6,200 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। किसानों की सुविधा और खरीद से संबंधित किसी भी समस्या के त्वरित समाधान के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6001 भी उपलब्ध कराया गया है। जयपुर जिले में किसानों की सुविधा के लिए कुल 42 खरीद केंद्र बनाए गए हैं जहां सरसों और चने की खरीद की जाएगी। आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है। भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम विश्व की सबसे बड़ी जन स्वास्थ्य पहलों में से एक है, जो हर साल 2 करोड़ से अधिक शिशुओं और लगभग 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं को 12 से अधिक जानलेवा बीमारियों के खिलाफ मुफ्त टीके उपलब्ध कराता है। इसमें BCG, OPV, पेंटावेलेंट, रोटावायरस, खसरा, रूबेला और सर्वाइकल कैंसर के लिए हाल ही में शुरू किया गया HPV जैसे टीके शामिल हैं। प्रदेश में भी टीकाकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। वर्ष 2024-2025 में यहां टीकाकरण का प्रतिशत 51.8 हो गया है। डीग में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं और बच्चों की टीकाकरण पर जोर दिया जाता है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज नई दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश के विकास से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और बेहतर कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की। दिया कुमारी ने केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बैठक कर पर्यटन की अपार संभावनाओं और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भेंट कर प्रदेश में सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के प्रयासों पर विचार विमर्श किया। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ उन्होंने प्रदेश के नागरिकों को बेहतर रेल सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी भेंट की। उत्तर भारत की प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी मंदिर का वार्षिक मेला आज से शुरू हो गया है। प्रदेश सहित देश के कई राज्यों से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। करीब 350 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, 200 अतिरिक्त सफाईकर्मी और 320 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोडवेज की 300 अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं। 1 अप्रैल तक चलने वाले कैला देवी मेले में करीब 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उधर पाली के देसूरी में सोनाड़ा गांव में कल से खेतलाजी जूनी धाम का 3 दिवसीय मेला भरेगा। मेले में महाआरती के साथ गैर नृत्य और भजन संध्या के भी आयोजन होंगे। प्रदेश में मौसम में आई बदलाव से कई हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की कमी आई है। फिलहाल राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 18 से 21 मार्च के बीच राज्य के कई जिलों में मेघ गर्जन, तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया, देश में क्रूड ऑयल का पर्याप्त भंडार, पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सामान्य चल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज डूंगरपुर में जनजातीय इलाकों के लिए 1,900 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद के लिए पंजीकरण 20 मार्च से शुरू होगा। और उत्तर भारत की प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी का वार्षिक मेला आज से शुरू, कई राज्यों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।